दी प्रिंट पॉड में आपका स्वागत है। मैं इंद्रजीत आपको सुना रहा हूं अनन्या भारद्वाज की रिपोर्ट। 50 दिनों की योजना, 93 जगह और 106 गिरफ्तारियां, एनआईए ईडी ने मिलकर कैसे छापेमारी को दिया अंजाम। दी प्रिंट को मिली जानकारी के अनुसार 50 दिनों तक बनाई गई योजना, कई सारी बैठकों, विभिन्न स्थानों के मानचित्रण और प्रस्तुतियों ने एक साथ मिलकर भारत के उस पहले समन्वित छापे को अंजाम दिया, जिसके तहत कई जांच एजेंसियों के 1500 से अधिक कर्मियों ने गुरुवार सुबह 3 बजे 15 राज्यों में 93 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और इससे संबद्ध संगठनों के नेताओं के घरों और कार्यालयों पर राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA, प्रवर्तन निदेशालय ED और स्थानीय पुलिस बलों द्वारा मिलकर की गई छापेमारी में 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए लोगों में PFI के सह संस्थापक पी कोया, जो प्रतिबंधित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया SIMI के पूर्व सदस्य भी हैं, PFI के अध्यक्ष OMA सलेम और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के अध्यक्ष E अबू बकर समेत PFI के कई अन्य सदस्य शामिल हैं। SDPI को PFI की राजनीतिक शाखा माना जाता है। NIA के सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के बाद की गई 106 गिरफ्तारियों में से 45 लोगों को NIA ने पिछले एक साल में एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए 5 मामलों, 1 हैदराबाद में, 3 दिल्ली में और 1 कोची में के तहत गिरफ्तार किया, जबकि अन्य लोगों को ED और स्थानीय पुलिस बल ने हिरासत में लिया है। सूत्रों ने आगे बताया कि NIA द्वारा की गई 45 गिरफ्तारियों में से 19 आरोपियों को केरल से, 11 को तमिलनाडु से, 7 को कर्नाटक से, 4 को आंध्र प्रदेश से, 2 को राजस्थान से और UP और तेलंगाना से 1-1 को गिरफ्तार किया गया है। NIA के सूत्रों के अनुसार यह एजेंसी PFI के सदस्यों से जुड़े 19 मामलों की जांच कर रही है और उनके पास विशिष्ट खुफिया जानकारी और सबूत हैं कि PFI के नेता और इसके कैडर के सदस्य आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने, सशस्त्र ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने और लोगों को प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी बनाने जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। सूत्रों ने आरोप लगाया कि PFI के सदस्य मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे हैं और ISIS जैसे प्रतिबंधित संगठन में शामिल होने के लिए उनकी भर्ती कर रहे हैं। पिछले हफ्ते तेलंगाना में भी एक छापेमारी की गई थी, जिसके बाद NIA ने दावा किया था कि PFI धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, हिंसक और आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने के मकसद से ट्रेनिंग देने के लिए शिविर आयोजित कर रहा था। इस गुरुवार को तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, बिहार और मणिपुर में छापेमारी की गई और कुछ तीखी धार वाले हथियारों सहित कई आपत्तिजनक सबूत और दस्तावेज जब्त किए गए। हालांकि NIA सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से कोई फायर आर्म्स बरामद नहीं हुए हैं। दी प्रिंट ने फ़ोन कॉल से ED के प्रवक्ता से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन हमारे कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया गया। इस बीच ED के कुछ सूत्रों ने बताया कि उनकी एजेंसी PFI सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है और इस संगठन को मिले धन के स्रोतों की भी छानबीन की जा रही है। हालांकि ED द्वारा इस छापेमारी के दौरान की गई गिरफ्तारियों की संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं है, मगर एजेंसी के सूत्रों के अनुसार 4 लोग PFI के लिए खाड़ी देशों से धन इकट्ठा करने के आरोपी, शफीक रहीमा PFI की दिल्ली शाखा के अध्यक्ष परवेज अहमद, दिल्ली में संगठन के महासचिव इलियास अहमद और कार्यालय सचिव अब्दुल मुफीद फिलहाल ED की हिरासत में हैं। इन गिरफ्तारियों की निंदा करते हुए PFI के प्रवक्ता ने दी प्रिंट को बताया कि NIA के सारे दावे निराधार हैं और उन्होंने इस एजेंसी पर आतंक का माहौल पैदा करने का आरोप भी लगाया। इस संगठन द्वारा जारी किए गए एक मीडिया बयान में कहा गया कि हम NIA और ED द्वारा मारे गए देशव्यापी छापे और लोगों की नाइंसाफी वाली गिरफ्तारी और भारत भर में हमारे PFI के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं के उत्पीड़न और संगठन के सदस्यों और समर्थकों के खिलाफ विचहंट निशाना बनाकर की गई कार्रवाई की निंदा करते हैं, मगर NIA के सूत्रों के अनुसार ये गिरफ्तारियां इस तरह के साक्ष्य और खुफिया जानकारी के आधार पर की गई हैं कि यह संगठन आतंकवाद, आतंकी गतिविधियों और सोशल मीडिया के माध्यम से वैमनस्य को बढ़ावा देने में शामिल हैं। NIA के एक सूत्र ने कहा, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वह आम जनता के मन में आतंक फैलाने के इरादे से हथियारों का उपयोग करके आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की तैयारी में शामिल हैं। ये आरोपी न केवल आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की ट्रेनिंग देते थे, बल्कि वे सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से समाज में वैमनस को भी बढ़ावा दे रहे थे। छापेमारी के बाद जारी एक बयान में NIA ने आरोप लगाया कि PFI कई हिंसक कृत्यों में शामिल रहा है, जिसमें एक कॉलेज के प्रोफेसर का हाथ काटना, अन्य धर्मों में विश्वास करने वाले संगठनों से जुड़े लोगों की निर्मम हत्याएं करना, प्रमुख लोगों और स्थानों को निशाना बनाने के लिए विस्फोटकों को इकट्ठा करना, प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक स्टेट को समर्थन करना और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना शामिल है, और इन सब का नागरिकों के मन में आतंक पैदा होने जैसा प्रभाव पड़ा है। दी प्रिंट से बात करते हुए एक PFI के सदस्य ने उनकी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा, NIA और ED द्वारा हम पर की गई कार्रवाई असहमत की आवाज़ को ख़त्म करने के लिए किया गया एक स्पष्ट विचंट है। यह उन सभी के साथ होने जा रहा है जो इस अलोकतांत्रिक शासन का विरोध करते हैं। PFI का उदय उस नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट NDF से हुआ है, जिसका गठन 1993 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुआ था। हालांकि PFI का गढ़ केरल में है, जहां से इसने देश के अन्य हिस्सों में अपना विस्तार किया है। NIA सूत्रों के अनुसार 23 राज्यों में इसकी उपस्थिति है। PFI खुद को नियो सोशल मूवमेंट बताता है, जिसका उद्देश्य भारत के हाशिए पर पड़े लोगों को मजबूत बनाना है। PFI पर आरोप लग चुके हैं कि वो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी का ही हिस्सा है। सिमी पर कई आतंकी हमलों में शामिल होने के आरोप हैं, जिसमें 2002 और 2003 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार हमले भी शामिल हैं। दी प्रिंट के इस अंक को सुनने के लिए धन्यवाद। एक नए अंक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।